एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास पर बात करने वाले हैं, पर्ल क्लीज का व्हाट लुक्स लाइक क्रेजी ऑन एन ऑर्डिनरी डे।
जी, 1997 में आया था ये।
हाँ, और ये किताब ना, ये आपको सोचने पर मजबूर करती है, मतलब व्यक्तिगत त्रासदी, समाज के ताने बाने और कैसे मुश्किल हालात में भी लोग जीवन, प्रेम, समुदाय, इन सब को चुनते हैं।
बिल्कुल, इसकी जटिलताओं में उतरती है ये कहानी।
हमारे पास इस उपन्यास पर कुछ नोट्स और विश्लेषण हैं, तो आज कोशिश करेंगे कि इसके सार को, इसकी आत्मा को समझें।
जरूर, और पर्ल क्लीज के बारे में भी थोड़ी बात होनी चाहिए, कमाल की शख्सियत है वो।
हाँ बिल्कुल, बताइए जरा।
देखिए, वो एक जानी मानी अफ्रीकी अमेरिकी लेखिका हैं, नाटककार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी। 1948 में जन्म हुआ और उनका पालन पोषण डिट्रॉइट में हुआ, वो भी नागरिक अधिकार और ब्लैक पावर आंदोलनों के बिल्कुल बीच।
अच्छा,
तो उसका असर उनके लेखन पर दिखता होगा।
बहुत गहरा असर है।
उनके पिता एल्बर्ट क्लीज जूनियर, वो खुद एक कह सकते हैं कट्टरपंथी ब्लैक राष्ट्रवादी मंत्री और कार्यकर्ता थे, तो वो जो राजनीतिक और सामाजिक चेतना है वो उन्हें बहुत कम उम्र में मिल गई थी।
और ये चेतना उनके लेखन में कैसे झलकती है, मतलब उनकी स्टाइल क्या है?
उनकी लेखनी का फोकस अक्सर अश्वेत नारीवादी दृष्टिकोण पर रहता है, मतलब ब्लैक फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव।
अच्छा।
हाँ, वो अश्वेत महिलाओं के अनुभवों को केंद्र में रखती हैं। उनके नजरिए से नस्लवाद, लिंगवाद, वर्ग, इन सबको एक साथ देखती हैं।
तो सिर्फ संघर्ष की कहानियां नहीं है?
नहीं नहीं, संघर्ष तो है, लेकिन साथ ही अश्वेत महिलाओं का जीवन, उनका प्रेम, उनकी जीत, उसका भी जश्न है। गर्मजोशी है, समझदारी है, और भाषा ऐसी कि आम पाठक भी जुड़ जाए। किरदार परफेक्ट नहीं होते, उनमें कमियां होती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, लचीले होते हैं।
और ये उपन्यास व्हाट लुक्स लाइक क्रेजी, ये भी उसी कड़ी में है। ये तो बहुत मशहूर हुआ था, ओपरा विनफ्रे के बुक क्लब में भी चुना गया था।
जी हाँ, 1998 में बेस्ट सेलर बन गया था। ये क्लीज का पहला उपन्यास था और बहुत सफल रहा। ये उनके उसी मूल दर्शन को दिखाता है कि मुश्किल हालात में भी समुदाय, प्यार और खुद को स्वीकार करने से ही उपचार और खुशी मिल सकती है।
तो चलिए फिर इस दुनिया में गोता लगाते हैं, देखते हैं कि कैसे एक साधारण दिन पर जो पागलपन जैसा लगता है, वो असल में जिंदगी का ही एक रूप है। कहानी कहां से शुरू होती है?
कहानी हमें ले जाती है एटलांटा। एवा जॉनसन नाम की एक औरत है, बहुत सफल, स्टाइलिश, अपने काम में माहिर हेयर ड्रेसर।
अच्छा।
शहर के जो अमीर लोग हैं, एलीट क्लास, उनके बाल बनाती है। उसने अपने लिए एक दुनिया बनाई है, ग्लैमर की, कंट्रोल की, सफलता की।
एक परफेक्ट इमेज।
बिल्कुल, लेकिन ये जो कांच का महल उसने बनाया है ना, वो एकदम से बिखर जाता है।
कैसे?
दो बातें एक साथ होती हैं। एक तो एक शादीशुदा आदमी के साथ उसका लंबा अफेयर था, वो बहुत बुरी तरह खत्म होता है, और लगभग उसी वक्त उसे पता चलता है कि वो एचआईवी पॉजिटिव है।
ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका है, खासकर उस दौर में।
बहुत बड़ा, ये दोहरा आघात उसे पूरी तरह से तोड़ देता है।
मैं सोच सकती हूँ, 90 का दशक था वो, एचआईवी एड्स को लेके कितना डर, कितना कलंक जुड़ा था, खासकर अश्वेत समुदाय में तो और भी ज्यादा।
हाँ, वो सिर्फ एक बीमारी का पता चलना नहीं था, वो समाज से बाहर कर दिए जाने जैसा था, शर्मिंदगी का एक बोझ था।
तो एवा कैसा महसूस करती है, मतलब इस बोझ के नीचे?
उसे लगता है जैसे उसके साथ धोखा हुआ है, उसके अपने शरीर ने, उसके फैसलों ने उसे धोखा दिया है। बहुत ज्यादा शर्मिंदगी, अपराध बोध। उसे लगता है जैसे ये कोई सजा है, एक मौत का फरमान मिल गया हो जैसे।
और इस उथल पुथल में वो क्या करती है?
वो एक बहुत बड़ा फैसला लेती है, दुनिया से एकदम कट जाने का।
मतलब?
अपना इतना सफल सलून बेच देती है, सामान पैक करती है और चली जाती है अपने बचपन के घर आइडलवाइल्ड, मिशिगन।
आइडलवाइल्ड?
हाँ।
उसकी बड़ी बहन है जॉयस, उसके घर। उसका इरादा बस ये है कि वहाँ खामोशी से अपनी मौत का इंतजार करे।
आइडलवाइल्ड, ये नाम कुछ सुनावा सा लग रहा है, ये कोई असली जगह है?
हाँ हाँ, बिल्कुल असली जगह है। और कहानी में ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक किरदार की तरह है। इसका अपना इतिहास है।
क्या इतिहास है?
इसे कभी ब्लैक ईडन कहा जाता था।
ब्लैक ईडन?
जी।
जब अमेरिका में नस्लीय अलगाव था, सेग्रीगेशन का दौर, तब ये उन कुछ चुनिंदा रिजॉर्ट टाउन्स में से एक था जहां अफ्रीकी अमेरिकी लोग आजादी से जमीन खरीद सकते थे, छुट्टियां मना सकते थे, एक सुरक्षित जगह थी उनके लिए।
अच्छा, लेकिन अब उपन्यास के समय में इसकी क्या हालत है?
अब वो पुरानी शानो शौकत नहीं रही, चमक फीकी पड़ गई है। अब ये एक शांत छोटा सा समुदाय है जो गरीबी, नशे जैसी आज की समस्याओं से जूझ रहा है।
तो अटलांटा की उस ग्लैमरस दुनिया से निकलकर एवा इस शांत, शायद थोड़ी दबी हुई सी जगह पहुंचती है जहां सब एक दूसरे को जानते होंगे।
बिल्कुल, और यही तनाव पैदा करता है। वो अपना दुख लेकर छिपने के इरादे से आती है, लेकिन क्या ऐसी जगह पर छिपना मुमकिन है?
मुश्किल लगता है। बहन के घर पहुंचने पर माहौल कैसा रहता है? जॉयस?
तनाव भरा। दोनों बहनों ने बहुत अलग अलग जिंदगियां जी हैं, रास्ते बिल्कुल जुदा रहे हैं। जॉयस की दुनिया एकदम अलग है, नियम कायदे, चर्च, समाज की जिम्मेदारियां। और एवा, वो शहरी है, अंदर ही अंदर एक बड़ा राज छुपाए हुए, तो टकराव तो होना ही है।
तो शुरुआत कैसी होती है एवा की वहां?
शुरुआत में तो वो बस खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, पढ़ती है, सोती है और बस सोचती रहती है कि कहाँ गलती हुई, कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई।
अकेलापन महसूस करती होगी बहुत।
बहुत ज्यादा। उसे लगता है कि उसका HIV स्टेटस उसे अछूत बना देता है, और मिशिगन की जो कड़ाके की सर्दियाँ हैं वो जैसे उसकी अंदर की हालत का आईना बन जाती है। सब कुछ ठंडा, जमा हुआ, जैसे बस अंत का इंतजार हो रहा हो।
ये तो वाकई बहुत निराशाजनक शुरुआत है। बीमारी, कलंक, बहन से तनाव, एक उजड़ते शहर में कोई भविष्य नहीं दिखना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती होगी? क्लीज की कहानियों में उम्मीद तो होती होगी।
हाँ, उम्मीद आती है, लेकिन बहुत अप्रत्याशित तरीके से, एक शख्स के रूप में, एडी जेफरसन।
एडी जेफरसन कौन है?
जॉयस के जरिए मुलाकात होती है। एडी एक बहुत ही करिश्माई, समझदार और रहमदिल इंसान है, और वो खुद एक सर्वाइवर है।
सर्वाइवर किस चीज का?
वो पहले नशे की लत में बुरी तरह फंसा हुआ था, उस आग से गुजरा है और अब बाहर निकल आया है।
अच्छा।
न सिर्फ वो अब साफ है, बल्कि अपने समुदाय को, खासकर नौजवानों को, नशे की जाल से बचाने में लगा हुआ है। उसका एक सपोर्ट ग्रुप भी है, आर यू स्केर्ड येट।
दिलचस्प किरदार है। मतलब उसको अपना अनुभव उसे एवा की हालत समझने में मदद करता होगा।
बिल्कुल, वो सिर्फ हमदर्दी नहीं दिखाता, वो समझता है। वो एवा की उन दीवारों के पार देख लेता है, उसके अंदर की डरी हुई लेकिन मजबूत औरत को पहचान लेता है।
लेकिन एवा तो खुद को सबसे छुपा रही थी, उसके लिए आसान नहीं रहा होगा।
शुरू में बिल्कुल नहीं। एवा बहुत डिफेंसिव रहती है, दूरी बनाए रखती है, लेकिन एडी, वो बहुत धीरज से, नरमी से पेश आता है। वो अपनी कहानी बताता है, कैसे वो नशे के गर्त में गिरा था, कैसे उसने वापसी की। उसकी ये ईमानदारी एवा को भी खुलने का मौका देती है। वो लोग आइडलवाइल्ड की पुरानी गलियों में घूमते हैं, बातें करते हैं। एडी उसे आइडलवाइल्ड का इतिहास बताता है, सिर्फ एक भूली हुई जगह की तरह नहीं, बल्कि अश्वेत लोगों की हिम्मत और शान की जगह के तौर पर।
तो एक कनेक्शन बनता है। हाँ।
बीमारी का पता चलने के बाद पहली बार एवा निराशा के अलावा कुछ और महसूस करने लगती है, एक मानवीय जुड़ाव, शायद प्यार की भी एक हल्की सी आहट। ये सब उसके अंधेरे आसमान में एक उम्मीद की तरह आता है। उसे डर भी लगता है और खिंचाव भी महसूस होता है।
ये तो एक अहम मोड़ लगता है। एडी सिर्फ एक लव इंटरेस्ट नहीं है, वो एक कैटलिस्ट है, एक उत्प्रेरक जो एवा को उसके बनाए खोल से बाहर निकाल रहा है। उसका होना ही जैसे सेकंड चांस के विचार को जिंदा कर देता है। लेकिन क्या ये सब थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं लगता? मतलब असल जिंदगी में इतनी आसानी से ऐसी स्वीकृति, ऐसा प्यार मिलना, वो भी उस दौर के HIV के डर को देखते हुए?
सवाल तो जायज है, और हो सकता है एडी का किरदार असलियत से ज्यादा उम्मीद का प्रतीक हो, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। एक और बड़ा ट्विस्ट आता है।
क्या?
इमानी नाम की एक लड़की का आना।
इमानी?
हाँ, वो जॉयस के चर्च की किसी दोस्त की पोती है, 16 साल की है, प्रेग्नेंट है और क्रैक कोकेन की आदी है।
अरे बाप रे, ये तो सच में क्रेजी सिचुएशन है।
वो किसी खतरनाक जगह से भागकर जॉयस के दरवाजे पर मदद के लिए आई है।
एक तरफ एवा खुद अपनी जिंदगी के तूफान से जूझ रही है, और अब ये एक और बड़ी जिम्मेदारी। एवा का क्या रिएक्शन होता है?
जॉयस तो अपने उस गहरे कर्तव्य बोध की वजह से फौरन इमानी को घर में रखने का फैसला कर लेती है। लेकिन एवा, वो पहले तो एकदम घबरा जाती है, विरोध करती है। उसे लगता है ये लड़की एक मुसीबत है, एक बिन बुलाए आफत जो उसके मुश्किल से बनाए शांत कोने को तहस नहस कर देगी। वो इस गंदगी से, इस दुख से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती।
समझ आता है, वो खुद ही टूटी हुई है।
हाँ, लेकिन फिर वो इमानी को करीब से देखती है, उसकी लाचारी, उसकी कमजोरी, उसकी बेबसी, ये सब देखकर एवा मजबूर हो जाती है अपनी उस आत्म केंद्रित पीड़ा से बाहर निकलने के लिए।
अच्छा,
अब ये प्रॉब्लम कोई अखबार की खबर नहीं है, ये उसके घर के अंदर एक जीती जागती मुसीबत है। तो उसकी जो शुरुआती हिचक थी ना, वो धीरे धीरे एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट, एक सुरक्षा की भावना में बदल जाती है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इमानी की मदद करने का फैसला एवा के लिए सिर्फ किसी और की मदद करना नहीं है, ये उसके लिए खुद अपनी जिंदगी में दोबारा एक्टिव होने जैसा है।
बिल्कुल, वो अब सिर्फ हालात की मारी एक विक्टिम नहीं है, वो बदलाव लाने वाली एक एजेंट बन रही है। ये उसे अपने दुख से परे एक मकसद देता है। अब उसके पास लड़ने के लिए कोई और भी है,
और शायद इसी वजह से वो और जॉयस, दोनों बहनें भी करीब आती हैं इस साझा संघर्ष में।
हाँ बिल्कुल, इमानी की देखभाल करना आसान नहीं है। नशे की तलब से निपटना, उसके मूड स्विंग्स, उसका गहरा सदमा, ये सब बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल सफर दोनों बहनों को एक साथ लाता है। वो अलग थलग रहने वाली बहनें अब सच्ची पार्टनर बन जाती हैं।
और एवा और एडी का रिश्ता, वो भी आगे बढ़ता है।
हाँ, वो और गहरा होता जाता है, एक सीरियस लव अफेयर में बदल जाता है।
तो फिर वो मुश्किल सवाल भी आता होगा।
हाँ, वो पल जिसका एवा को सबसे ज्यादा डर था, उसे एडी को बताना है कि वो HIV पॉजिटिव है।
ओह, ये सीन कैसा है उपन्यास में?
बहुत तनाव भरा, लेकिन बहुत ईमानदारी से लिखा गया है। एवा जैसे अपनी आत्मा खोलकर रख देती है और मन ही मन सबसे बुरी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहती है।
और एडी?
एडी क्या कहता है?
नहीं तो कहानी का शय, सबसे अहम पल है जहाँ वो कलंक का डर सामने आता है।
एडी की प्रतिक्रिया, वो इस उपन्यास के दिल को छू लेने वाले संदेश का निचोड़ है। वो डरता नहीं है।
सच में?
हाँ, वो एवा से कहता है भाव बदलते हुए, मैं वायरस से नहीं डरता एवा, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। बाकी सब हम देख लेंगे, हम सावधान रहेंगे, लेकिन हम जीना बंद नहीं करेंगे।
वाह,
ये जो बिना शर्त का प्यार और स्वीकृति है ना, ये एवा को उसकी शर्मिंदगी के बोझ से जैसे आजाद कर देता है। उसे यकीन दिलाता है कि वो अब भी प्यार के, एक पूरी जिंदगी के काबिल है।
ये कमाल का है, एडी की ये बात सीधे उस डर और कलंक को चुनौती देती है। ये डर पर जिंदगी और प्यार को चुनने का एक बहुत ताकतवर संदेश है। ये दिखाता है कि कैसे बस एक इंसान का साथ आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। इस स्वीकृति से जो ताकत मिलती है, उसका क्या असर होता है एवा पर और एडी पर?
इससे दोनों को हिम्मत मिलती है। एडी अपनी कम्युनिटी एक्टिविज्म को और तेजी से आगे बढ़ाता है। एवा जिसमें लोगों को जोड़ने और ऑर्गेनाइज करने का हुनर था ही।
हाँ, उसके सैलून वाले दिनों से।
बिल्कुल, वो हुनर अब यहाँ काम आता है। वो एडी के साथ मिलकर काम करती है, आइडल वाइल्ड के नौजवानों को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए मीटिंग्स करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं।
तो एवा अब छिप नहीं रही है?
बिल्कुल नहीं, वो सबके सामने है, एक्टिव है, अपनी आवाज उठा रही है। वो सिर्फ HIV के साथ नहीं जी रही, वो अब पूरी तरह से जी रही है। उसका अपना ठीक होना और समाज के लिए कुछ करना, ये दोनों चीजें जैसे एक साथ चल रही हैं।
तो कहानी सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति की नहीं रहती, वो सामुदायिक जुड़ाव और जिम्मेदारी तक पहुंच जाती है, और परिवार की परिभाषा भी बदलती दिख रही है। सिर्फ खून के रिश्ते नहीं, बल्कि वो लोग जिन्हें आप चुनते हैं, जो प्यार और सहारे से बंधे हैं। कहानी का अंत कैसे होता है? इमानी और उसके बच्चे का क्या होता है?
कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब इमानी एवा और जॉयस के पूरे सहारे से एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देती है,
और उसका नाम वो जॉयस रखती है।
अच्छा, लेकिन फिर एक बहुत ही दिल तोड़ने वाला लेकिन समझदारी भरा पल आता है। इमानी को एहसास होता है कि वो अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं है। तो वो एवा से कहती है कि वो बच्ची को गोद ले ले।
ये तो एवा के लिए बहुत बहुत बड़ा फैसला होगा। वो औरत जो कहानी की शुरुआत में अपनी मौत की तैयारी कर रही थी, अब उसे एक नई जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने को कहा जा रहा है,
और वो हाँ कहती है।
कहती है?
हाँ। उपन्यास के आखिर में हम एवा, एडी और बेबी जॉयस को एक नए, गैर परंपरागत लेकिन बहुत प्यार भरे परिवार के रूप में देखते हैं। एवा का भविष्य अब बीमारी से तय होने वाला कोई सवालिया निशान नहीं है। वो प्यार, मकसद और जिम्मेदारी से भरी एक जीती जागती हकीकत है। ये कोई जादू से ठीक हो जाने वाला एंड नहीं है,
नहीं,
बल्कि एक अलग तरह के चमत्कार का जश्न है कि जिंदगी जैसी भी है, अपनी सारी मुश्किलों, उलझनों और खूबसूरती के साथ उसे अपनाने का चुनाव करना। एवा ने एक पूरा चक्कर लगाया है, लेकिन वो वापस अपने पुराने जीवन में नहीं गए। उसने उस जगह पर एक ज्यादा सच्चा, ज्यादा सार्थक जीवन बनाया है, जहां उसने कभी इसकी उम्मीद भी नहीं की थी।
एवा का ये बदलना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का है। निराशा से निकलकर जीवन को गले लगाना और एक चुना हुआ परिवार बनाना, ये उपन्यास वाकई कई गहरे विषयों को छूता है। अगर हम इसके मुख्य संदेशों को समेटना चाहें तो वो क्या होंगे?
हाँ, कई परतें हैं इसमें। सबसे पहला और शायद सबसे ऊपर जो है वो है मुक्ति, और दूसरा मौका, रिडेम्पशन एंड सेकंड चांस। आप देखें तो लगभग हर खास किरदार को, एवा, एडी, इमानी, यहाँ तक कि आइडलवाइल्ड शहर को भी एक दूसरा मौका मिलता है, या वो उसकी तलाश में है। क्लीज जैसे ये कहती हैं कि आपकी पिछली गलतियां आपका भविष्य तय नहीं करती। अगर आप जिम्मेदारी लें, हिम्मत दिखाएं और आपको सहारा मिले तो नई शुरुआत मुमकिन है।
सही कहा। और दूसरा, परिवार की परिभाषा भी बदलती है।
बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। खून का रिश्ता, एवा और जॉयस भी मुश्किलों से गुजरकर मजबूत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर चुने हुए परिवार पर है। एवा, एडी, बेबी जॉयस और पूरा समुदाय भी एक तरह से परिवार का ही बड़ा रूप है। परिवार वो है जिसे आप प्यार, वफादारी और आपसी देखभाल से बनाते हैं।
और समुदाय की जो हीलिंग पावर है, उपचार करने की शक्ति, वो भी एक बड़ा थीम है।
हाँ, ये अश्वेत समुदाय के लिए एक तरह की श्रद्धांजलि भी है। अटलांटा का ग्लैमर है पर अकेलापन भी है। आइडलवाइल्ड में भले ही चमक कम हो पर लोग जुड़े हुए हैं, कभी कभी जरूरत से ज्यादा भी दखल देते हैं।
हाँ, छोटे समुदायों में होता है ऐसा।
पर वहीं एक दूसरे का बोझ उठाया जाता है। जॉयस के चर्च के दोस्त हों, एडी का सपोर्ट ग्रुप हो, यही माहौल एवा और इमानी को ठीक होने में मदद करता है। मतलब आपका अपना ठीक होना कहीं ना कहीं समाज के ठीक होने से जुड़ा है।
बिल्कुल। और शायद सबसे गहरा संदेश जो मुझे लगा वो है, मुश्किल हालात में भी जीवन और प्रेम को चुनना।
हाँ, ये उपन्यास इसी सवाल से जूझता है कि जब मौत का खतरा सामने हो तो इंसान क्या करता है। एवा शुरुआत में डर और वापसी चुनती है। उसकी पूरी यात्रा इसी डर को छोड़कर जिंदगी, प्यार और जिम्मेदारी को सक्रिय रूप से चुनने की है। एडी के साथ उसका रिश्ता इसी बात को पुख्ता करता है। प्यार करना एक जोखिम है, परिवार बनाना उम्मीद का काम है।
और एचआईवी एड्स से जुड़े उस डर और कलंक का सामना कैसे किया जाए? ईमानदारी से, हिम्मत से और करुणा से। जिंदगी हालात से तय नहीं होती, बल्कि उन हालात पर हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं उससे तय होती है।
सही। और आखिर में सामाजिक जिम्मेदारी और सक्रियता भी एक अहम धागा है। क्लीज सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं कहती, वो उसे उस समय के बड़े सामाजिक मुद्दों से जोड़ती हैं, खासकर नशे की जो महामारी फैली हुई थी। एडी और एवा का अपने समुदाय के लिए काम करना, वो उनके प्यार और उनके ठीक होने की कहानी का एक जरूरी हिस्सा है। ये याद दिलाता है कि हमारी अपनी भलाई दूसरों की भलाई से अलग नहीं है। हम अक्सर अपने अंदर झांकने में ही मकसद ढूंढते हैं, पर कई बार मकसद बाहर की तरफ देखने, दूसरों की जरूरतें पूरी करने में मिलता है।
बहुत खूब। और इन सब बातों को क्लीज कहती कैसे हैं? उनकी लिखने की शैली, उनकी तकनीक पर भी थोड़ी बात करें।
हाँ, उनकी शैली भी खास है। ज्यादातर कहानी एवा के नजरिए से, फर्स्ट पर्सन में, तो हम सीधे उसके मन में, उसके डर में, उसकी सोच में उतर जाते हैं।
हाँ, वो आवाज बहुत सच्ची लगती है। उसमें विट है, मजाक है, ईमानदारी है और कमजोरी भी है। कहानी भारी होकर भी बोझिल नहीं लगती।
बिल्कुल। और प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी बहुत सुंदर है। जैसे आइडलवाइल्ड शहर खुद, कभी वो अश्वेतों के लिए गौरव का प्रतीक था, अब उसकी हालत समुदाय की चुनौतियों को दिखाती है, पर उसका इतिहास उम्मीद भी जगाता है।
और मौसम, वो भी एवा के मूड के साथ बदलता है ना?
हाँ, बिल्कुल। सर्दी में आती है जब वो अंदर से जमी हुई है, वसंत में पिघलना शुरू होता है, नई उम्मीदें जगती हैं और अंत में परिवार का बनना जैसे जीवन में एक नया मौसम है।
और बालों का जिक्र, वो पहले हेयरड्रेसर थी।
हाँ, वो भी एक मोटिफ है। शुरू में बाल उसके लिए एक बाहरी कवच जैसे थे। आइडलवाइल्ड आकर वो इस दिखावे को छोड़ देती है, और बाद में जब वो इमानी के या बच्ची के बालों का ध्यान रखती है तो वो देखभाल और प्यार का प्रतीक बन जाता है।
भाषा कैसी है? क्या बहुत साहित्यिक है?
नहीं, भाषा बहुत सीधी है, आम बोलचाल के करीब, लेकिन असरदार है। संवाद बहुत असली लगते हैं, जैसे हम सच में लोगों को बात करते सुन रहे हों। क्लीज नाटककार भी रही हैं, तो डायलॉग पर उनकी पकड़ दिखती है और टोन वो बहुत दिलचस्प है। गंभीरता भी है, हास्य भी है, दुख है तो उम्मीद भी है। भारी विषयों के बावजूद एक आशावादी एहसास बना रहता है।
ये जानबूझकर किया गया लगता है ना, वो आशावादी नजरिया उपन्यास के मूल संदेश से जुड़ता है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी है। और शीर्षक का मतलब व्हाट लुक्स लाइक क्रेजी ऑन एन ऑर्डिनरी डे, ये भी शायद यही कहता है कि जिसे दुनिया पागलपन समझे वो शायद जीने का ही एक तरीका है, अप्रत्याशित, मुश्किल पर सच्चा।
हाँ बिल्कुल। और एडी का वो डायलॉग जहाँ वो कहता है कि वो वायरस से नहीं एवा को खोने से डरता है, वो भी कहानी के इसी सार को पकड़ता है, प्यार का डर पर जीतना।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम जुड़ाव, समुदाय और प्रेम को चुनें, तो हम ना सिर्फ टिके रह सकते हैं बल्कि पूरी तरह से जी भी सकते हैं।
हाँ, शायद ये कहानी यही सिखाती है कि डर के ऊपर रिश्ते को चुनना कितना कितना क्रांतिकारी हो सकता है, भले ही दुनिया उसे पागलपन कहे।
और ये भी कि सामुदायिक सहारा और स्वीकृति, चाहे वो कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, वो सच में जिंदगी बदलने वाले दूसरे मौके दे सकते हैं।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।